अमाल बाब 22। पौलुस ने कहा,
अये मेरे बुजुर्गों और भाइयों, सुनो, मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ।
जब यहूदियों ने सुना कि पौलुस इब्रानी जबान में बातें कर रहा है तो चुप हो गए। पौलुस ने कहा,
मैं यहूदी हूँ और मैं तरसुस में पैदा हुआ हूँ, जो मुल्क के कलकियाह में है। मेरी परवरिश शहर यरूशलम में हुई और मैं गमलीएल का तालिब इल्म था, जिसने मुझे ख़ास तवज्जो से हमारे बाप दादा की शरीयत की तालीम दी। मैं सच्ची लगन से खुदा की खिदमत कर रहा था, जैसा कि तुम लोग आज यहाँ से जमा हो। मैंने उन लोगों को बहुत सताया जो मसीही तरीक़े पर चलते थे। उनमें से चंद लोगों की मौत का सबब मैं हूँ। मैंने मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाला। आला काहिन और बुजुर्ग यहूदी सरबराह साबित कर सकते हैं कि यह सच है। एक मर्तबा इन सरबराहों ने मुझे खतूत दिए, दमिश्क में यहूदी भाइयों के लिए थे। इस तरह मैं वहां यीशु के शागिर्दों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था, ताकि सजा देने के लिए उन्हें यरूशलम ले आऊं। मेरे दमिश्क के सफर के दौरान कुछ वाकया रूनुमा हुआ। दोपहर के करीब जब मैं दमिश्क के नज़दीक था कि अचानक आसमान से एक चमकता नूर मेरे चारों तरफ छा गया। मैं ज़मीन पर गिर गया। एक आवाज़ आई जो कह रही थी, साउल साउल, तो मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि तुम कौन हो, अय खुदावन? आवाज़ ने जवाब दिया, मैं नासरी यीशु हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुमने सताया था। जो आदमी मेरे साथ थे, उन्होंने आवाज़ को न समझा, लेकिन उन्होंने नूर को देखा। मैंने कहा, अय खुदावन, मैं क्या करूँ? खुदावन ने जवाब दिया, उठो और दमिश्क जाओ, वहाँ तुझे तमाम चीज़ों के मुतालिक कहा जाए जो मैंने तेरे करने के लिए मुकर्रर किया है। मैं देख नहीं सका क्योंकि उस नूर की तजल्ली ने मुझे अंधा बना दिया। इसलिए जो आदमी मेरे साथ थे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क ले गए। दमिश्क में हनानिया नामी एक शख्स मेरे पास आया, जो परहेजगार आदमी था और मूसा की शरीयत का इताअत गुजार था। वहां तमाम यहूदी उसकी इज्जत करते थे। उसने मेरे करीब आकर कहा, भाई साउल, दोबारा देखो, और इसी लम्हा अचानक मैं उसको देख सका। उसने कहा, मेरे बाप दादा के खुदा ने तुम्हें बहुत पहले मुंतखब कर लिया है, ताकि तुम उसके मंसूबों को जान लो और उस रास्तबाज को देख लो और उसके अल्फाज को सुन लो। तुम उसके गवाह होगे सब लोगों पर और जो कुछ तुमने देखा और सुना। अब ज्यादा इंतजार मत करो, उठो और बपतिस्मा लो और अपने गुनाहों को उसके नाम का भरोसा करके नजात के लिए धो डालो। इसके बाद मैं वापस यरूशलम आया और जब मैं हैकल में दुआ कर रहा था तो मैंने रोया देखा। मैंने यीशु को देखा। उसने मुझसे कहा, जल्दी से यरूशलम को छोड़ दो, यहाँ लोग मेरे मुतालिक तुम्हारी नबूवत कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा, अय खुदावन, लोगों को ये मालूम है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारे ईमान वालों को मारा पीटा और जेल में डाला और यहूदी इबादत खानों में घूम घूम कर उन्हें तलाश करता और उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए गिरफ्तार करता रहा। और जब तुम्हारे गवाह स्टीफन का खून हुआ था, मैं वहां मौजूद था और उसको मार डालने के लिए मैंने मंजूरी दी थी और उनके कपड़ों की हिफाजत भी की थी जिन्होंने उसको मारा था। लेकिन यीशु ने मुझको कहा, جاؤ، اب میں تمہیں غیر یہودی قوموں کے پاس بھیجوں گا جو بہت دور ہیں۔
جب پولس نے غیر یہودی قوموں کے پاس بھیجے جانے کی بات کہی تو لوگوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور چلائے،
اس کو مار ڈالو، اس کو زمین سے فنا کر دو، ایسے آدمی کا زندہ رہنا مناسب نہیں۔
وہ چلا کر اپنے کپڑے پھینکتے ہوئے دھول ہوا میں اڑانے لگے۔ فوجی افسر نے سپاہیوں سے کہا کہ پولس کو قلعے میں لے جاؤ۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ پولس کو مارو تاکہ معلوم ہو کہ لوگ کس سبب سے اس کی مخالفت میں چلا رہے تھے۔ اس لیے سپاہیوں نے پولس کو باندھ دیا اور اسے مارنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن پولس نے ایک فوجی افسر سے کہا،
کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک رومی شہری کو مارو جبکہ اس کا جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے؟
افسر نے جب یہ سنا تو سردار کے پاس گیا اور سب کچھ کہا۔ پھر افسر نے اس سے کہا،
تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ شخص پولس روم کا شہری ہے۔
اعلیٰ سربراہ نے پولس کے قریب آ کر پوچھا،
مجھ سے کہو، کیا تم واقعی روم کے شہری ہو؟
پولس نے کہا،
ہاں۔
اعلیٰ سربراہ نے کہا،
میں نے روم کا شہری بننے کے لیے بڑی رقم دی ہے۔
لیکن پولس نے کہا،
میں پیدائشی روم کا شہری ہوں۔
جو لوگ پولس سے تفتیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے وہاں سے فوراً چلے گئے۔ اعلیٰ سربراہ ڈر گیا کیونکہ وہ پولس کو باندھ چکا تھا اور پولس روم کا شہری تھا۔ دوسرے دن سردار کاہن نے طے کیا کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے کہ یہودی کیوں پولس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کاہنوں کے رہنما اور عدالت کے صدر کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولس کی زنجیریں کھول دیں اور اس کو مجلس کے سامنے کھڑا کر دیا۔